नमस्कार भारत, आज 8 नवंबर दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। काले धन पर लगाम के लिए की गई नोटबंदी को पूरे हुए एक साल, क्या कुछ रहा हासिल?
नोटबंदी से काला धन खत्म होगा ये तो एक मिथ था और वो अभी एक्सपोज हो गया है।
नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विपक्ष आज मना रहा है काला दिवस, सरकार ने कहा सफल रही है नोटबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचन के पूरे हुए एक साल, सुनिएगा एक खास रिपोर्ट बनारस के परंपरागत साड़ी उद्योग पर जो लगातार खत्म होता जा रहा है।
इसका मुस्तकबिल, इसका फ्यूचर हमें तो नहीं दिख रहा है क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब आदमी को इनकम दिखती है तो आदमी सोचता है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को उसी में डाले।
होंगी और भी खबरें लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में मतदान समाप्त हो गया है। बीते साल 8 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से इसे अमेरिका में होने वाला सबसे अहम चुनाव माना जा रहा है। गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एड गिलेस्पी ने ट्रंप की तरह ही अपना चुनाव अभियान चलाते हुए प्रवासियों और अपराध पर सख्ती बरतने के वादे किए हैं। हालांकि गिलेस्पी ने अपने अभियान में राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र नहीं किया है। सर्वेक्षकों का कहना है कि चुनाव बेहद कांटे का है और किसी की भी जीत का सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। कैटालोनिया के निर्वासित नेता कार्लस पुज़दिमोन ने यूरोपीय संघ के नेताओं को अगले महीने कैटालोनिया में होने वाले चुनावों के नतीजे स्वीकार करने की चुनौती दी है। पुज़दिमोन ने पूछा है कि अगर कैटलन लोग स्पेन से आज़ादी का चुनाव करते हैं तो क्या यूरोप इसका समर्थन करेगा। ब्राज़ील्स में कैटलन शहरों के मेयरों को संबोधित करते हुए पुज़दिमोन ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जों क्लॉद यूंकर और यूरोपीय संसद के प्रमुख एंटोनियो ताजानी से पूछा है कि क्या वो स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखॉय के तख्ता पलट का समर्थन करते रहेंगे। पुज़दिमोन ने कहा, श्रीमान यूंकर, श्रीमान ताजानी, क्या आप कैटलन लोगों के मत को स्वीकार करेंगे या नहीं? क्योंकि अगर नतीजा ये रहा कि कैटलन लोग सरकार को, संसद को और स्वतंत्र रहने के लोकतांत्रिक चुनाव को चुन ले तो क्या आप उसे नकार देंगे? क्या आप श्रीमान रखोय का इस तख्ता पलट में और स्वतंत्रता के हनन में समर्थन करते रहेंगे? क्या आप नागरिकों के लिए ऐसा यूरोप बनाएंगे? मैं कहता हूं नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब से कुछ देर में दक्षिण कोरिया की संसद को संबोधित करेंगे। ट्रंप का भाषण उत्तर कोरिया पर अमेरिका की नीति पर ही केंद्रित रहेगा। अपनी दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने और बातचीत करने का आह्वान किया है। सियोल में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि दोनों देशों के बीच गठबंधन के 60 साल पूरे होने पर दक्षिण कोरिया के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के उत्तर कोरिया को बर्बाद करने वाले उत्तेजक बयानों के बजाय भरोसे का संदेश सुनना चाहते हैं। ट्रंप आज ही दक्षिण कोरिया से चीन के लिए रवाना होंगे। चीन उत्तर कोरिया का अहम सहयोगी देश है। ब्रितानी राज परिवार के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी निजी जागीर के वित्तीय हित होने की जानकारी दिए बिना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते में बदलाव की वकालत की है। पैराडाइज पेपर्स में सार्वजनिक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि डची ऑफ कॉर्नवाल ने एक ऐसे विदेशी फर्म में गुप्त तरीके से शेयर खरीदे जिसे इन बदलावों से फायदा हो सकता था। डची का कहना है कि प्रिंस चार्ल्स सीधे तौर पर निवेश करने के फैसलों में शामिल नहीं थे। डची ने साल 2008 में अपनी हिस्सेदारी 3 गुना अधिक कीमत पर बेच दी थी। बोलीविया में हजारों लोगों ने राजधानी लापाज की सड़कों पर मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इवो मोरालेज को साल 2019 में चौथी बार चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए देश के संविधान में बदलाव की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति मोरालेज के संविधान में बदलाव के प्रस्ताव को बीते साल जनमत संग्रह में नकार दिया गया था। 11 सालों से देश की सत्ता संभाल रहे मोरालेज देश की मूल बहुसंख्यक आबादी से आने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। साल 2016 का 8 नवंबर आपको याद होगा। पूरी दुनिया में सबकी निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर लगी थीं क्योंकि चुनाव के नतीजे आने वाले थे। उस चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप आज ही के दिन अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। हम लोग भी बीबीसी के न्यूज रूम में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरें करने में जुटे थे कि तभी रात 8 बजे अचानक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हुए नजर आए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य भाषण की तरह ही लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया और ये नोटबंदी उसी रात 12 बजे से लागू हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। जिनके पास 500 1000 के नोट पड़े थे वो उसे बदलने के लिए बैंकों की कतारों में खड़े नजर आए। कई महीनों तक भारत इस नोटबंदी के प्रभाव को झेलता रहा और प्रधानमंत्री के उस वचन पर भरोसा बनाए रहा कि ये कार्रवाई काले धन पर लगाम लगाने के लिए की गई है। इस एक साल में नोटबंदी का कितना और कैसा असर रहा ये बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद इस रिपोर्ट में।
आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जब यह घोषणा की तो देश में एक त्राहिमाम समझ गया। ऐसा होना भी था क्योंकि देश का एक एक शख्स इस फैसले से बच नहीं सकता था। नोटबंदी की ऐतिहासिक घटना के पूरे एक साल होने पर भी लोग इसे भूले नहीं हैं।
दिक्कत तो काफी हुई थी नोटबंदी के दौरान, जैसे हम घंटे घंटे भर ATM के लाइनों के बाहर खड़े होते थे, दो दो घंटे तक खड़े हुए हैं,
तो बहुत दिक्कत हुई थी। सुबह मॉर्निंग में उठो, लाइन में जाओ ATM की, ऑल दिस थिंग एकदम नहीं करना चाहिए था, सडन ऑफ सब कुछ बंद।
दो तीन दिन के लिए काम छोड़ गया, फिर उसी को दिक्कत ही बोलते हैं।
प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोगों को, मतलब उन्होंने ये चीज करी पर प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करी।
नोटबंदी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था कुछ सुस्त पड़ी और ये देखा भी गया कि इससे व्यापारी वर्ग पर खासा असर पड़ा। एक कपड़ा व्यापारी गगन आहूजा कहते हैं कि वह नोटबंदी की घटना से अब तक उबर नहीं पाए हैं।
जैसे पहले जब काम हुआ करता था तो बहुत आराम से इजीली हो रहा था, जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद लोग उसी में इतना उलझ गए कि परचेजिंग की तरफ या किसी भी अपनी जरूरत को बहुत कंट्रोल में कर लिया लोगों ने। क्योंकि जो स्टॉक परचेज पहले से हम लोगों ने करके रखे हुए थे, जैसे होता है, तो वो माल नहीं बिके कि वैसे न्यू परचेजिंग नहीं करना।
व्यापारियों के अलावा असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी वर्ग भी इसकी चपेट में आया था। एक कर्मचारी विजेंद्र नोटबंदी के हाल को कुछ यूं बयां करते हैं।
कुछ दिन काम मिलता, उसके बाद लगता कि वो कहता कि भाई ब्रेक ले लो, अभी काम नहीं है, जब काम आएगा हम आपको फोन करके बुला लेंगे। कुछ तो जॉब, जहाँ जहाँ मैं जॉब किया कुछ तो कहीं तो काम खत्म हो जाता था। एक्चुअली क्या था कि वो लोग काम तो अपना सेल्फ उनका होता नहीं है, जो फैक्ट्रियां हैं उनका तो अपना बायर होता है, लिंक होते हैं, उनके अपने ऑर्डर होते हैं, वो हिसाब से काम करते हैं।
विपक्ष नोटबंदी को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हावी रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इसे बुरा फैसला बताया। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी नोटबंदी को बड़ी भूल बताया, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर इस फैसले की पैरवी की और मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। लेकिन उन्होंने कहा कि नोटबंदी से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी ऐसा नहीं है।
कोई डीमोनेटाइजेशन वन ऑफ सॉल्यूशन है कि इससे सारा समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसने एक एजेंडा बदला और उस बदले एजेंडा में लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हम जाएं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल टैक्स असेसीज उसकी संख्या नॉर्मल की तुलना में बढ़ने लगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, हाई डिनोमिनेशनल करेंसी कुछ मात्रा में स्क्वीज की गई है, टेरर फंडिंग के ऊपर एक बड़ा स्क्वीज लगा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के दौरान घोषणा करते हुए कहा था कि 2015 के बाद से ही मजबूत कानून बनाकर उन्होंने चोर दरवाजों को बंद किया है, जिससे करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए काला धन वापस लाने में मदद मिली। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2016-17 की सालाना रिपोर्ट जारी कर कहा था कि चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में से लगभग 99% बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं। हालांकि काले धन पर रोक लगाने के लिए की गई नोटबंदी से काले धन पर कितनी रोक लग पाई इस पर सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया है। अब आगे देखना यह है कि सरकार नोटबंदी से हुए फायदों पर पुख्ता सबूत जनता के सामने कब पेश करेगी। मोहम्मद शाहिद, BBC दिल्ली।
आपने सुना नोटबंदी के एक साल बाद समाज के विभिन्न तबकों के लोग क्या कह रहे हैं। उधर नोटबंदी के फैसले को एक साल पूरा होने पर विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ आज पूरे देश में काला दिवस मनाने जा रही हैं। वामपंथी दल आज के दिन को प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या तैयारियां हैं वाम दलों की और क्या विपक्ष नोटबंदी के विरोध के फैसले पर एकजुट है, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी पायल भुयन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात से बात की।
आज हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था में जो नुकसान हुआ है और लाखों लोगों को परेशानी हुई है नोटबंदी के कारण, रोजगार खत्म हुआ है, छोटे कारोबार खत्म हुआ है, इसके खिलाफ प्रतिषेध व्यक्त करने के लिए हम कल पूरे देश में प्रतिषेध दिवस मना रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में हमारी वामपंथी पार्टियां इसके लिए कार्यक्रम बनाए हैं।
नोटबंदी पर सरकार जितने ताकतवर तरीके से अपने तर्क रख रही है या फिर अपना बचाव कर रही है, विपक्ष के विरोध में वो धार नजर नहीं आ रही है।
नोटबंदी के बारे में कुछ भ्रम था शुरू में लोगों में, जिस तरह का सरकार की प्रचार थी कि ये सब काला धन खत्म करने के लिए है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, लेकिन एक साल में ये देखा गया है कि नोटबंदी के कारण हमारे आर्थिक व्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। विपक्षी पार्टियों को ये महसूस हुआ है, बहुत से पार्टियों को, कि यह ऐसा सवाल है जिससे मोदी गवर्नमेंट का जो एक्सपोजर, पर्दाफाश किया जा सकता है, और मोदी सरकार की ओर से काला दिन के खिलाफ कल ये कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन दो दिन पहले पूरी दुनिया के अखबारों में आ गया है पैराडाइज पेपर। ये दिखाता है कि हमारे देश से यहाँ के सबसे जो अमीर तबके हैं, सबसे प्रभावशाली है, वो तो अभी भी अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। तो ये नोटबंदी का जो मकसद था वो पूरी तरह अभी बेनकाब हो चुका है।
ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार रोकने में नोटबंदी अपने आप में कितना बड़ा फैसला है, आप लोगों को नोटबंदी में क्या खोट नजर आता है?
काला धन कैश के रूप में कोई रखता नहीं है। काले धन का जो रूप है वो अलग अलग तरीके के संपत्ति और एसेट्स के रूप में रखा जाता है। एक तो रियल एस्टेट है, दूसरा है विदेशी मुद्रा में बाहर भेजना काले धन को। तो काला धन जो है वो सिर्फ नोट के रूप में या कैश के रूप में, मुद्रा के रूप में कोई नहीं रखता है। तो नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, ये तो एक मिथ था और वो अभी एक्सपोज हो गया है, और हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था है उससे काला धन लगातार पैदा होता है, और उस पर उस व्यवस्था में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको दूर करने के बजाय सिर्फ नोटबंदी से कुछ बात निकली नहीं है। ये बात परिणाम हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ लोगों को परेशान किया है, उन पर ज्यादा बर्डन थोपा है। तो मेरे ख्याल में ये नोटबंदी का पॉलिटिकल कॉस्ट मोदी सरकार को चुकाना पड़ेगा आने वाले दिनों में।
ये थे वरिष्ठ सीपीएम नेता प्रकाश करात। और अब रुख करते हैं अमेरिका का, जिसकी चर्चा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल 8 नवंबर को ही देश के 45वें राष्ट्रपति चुने गए थे। अपने शुरुआती भाषण में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने की बात की थी और कहा था कि वो अमेरिका में नौकरियां पैदा करेंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों का विरोध किया था, नई विदेश नीति लाने की बात की थी जिसके मूल में था अमेरिका को विश्व के मंच पर महान बनाना। लेकिन बीते एक साल में ट्रंप अमेरिका को कहां तक ला सके हैं, यही जानने के लिए हमने बात की वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी से।
देखिए, जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका में हमने लेजिस्लेशन की वजह से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास इतना ज़्यादा इख्तियार नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, मगरबी देश जो हैं, उनसे अगर इनका कंपैरिजन करें तो, क्योंकि उनका मानना ये है कि एग्जीक्यूटिव को इतने इख्तियार ना दे दिए जाए कि कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको बाकी जो मॉडर्न एरा में जो प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, उनसे मुख्तलिफ तरीके से हमें देखना पड़ेगा। अगर हम प्रेसिडेंट ओबामा की बात करें तो उन्होंने अपने पहले साल में ही मेजर लेजिस्लेशन पास की थी, क्योंकि जाहिर बात है इनका अहम काम, मेजर जॉब इनकी यही है कि लेजिस्लेशन पास कराई जाए। अब जो वादे किए गए थे इलेक्शन कैंपेन में वो पूरे किए जाए। अब जो वादे डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे इलेक्शन जीतने के बाद, उनमें से जो एक मेजर चीज थी वो ये थी कि वो, एक तो उन्होंने कहा था कि वो जो दीवार बनाएंगे मेक्सिकन्स को रोकने के लिए, उस पर हमने देखा कि वो एक नारा, इलेक्शन का एक नारा साबित हुआ। ना कोई अभी फंडिंग की गई, ना उस पर कोई काम किया गया और ना ही अब उस पर उस तरह से बात होती है। दूसरा, अगर हम देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक और चीज कही थी वो थी इमिग्रेशन के हवाले से। अब इमिग्रेशन के हवाले से जो उन्होंने कानून साजी करने की कोशिश की उसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में यहाँ पे यही कहा जा रहा है लोकल मीडिया में भी कि वो अकेले काम करने के आदी हैं और वो उसी तरह से प्रेसिडेंसी चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट अकेले जो है वो कोई काम नहीं कर सकता, उसको बाकी लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो अपने ही रिपब्लिकन पार्टी के ही लोग जो हैं उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, और फिर जब इख्तलाफ होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे जाते हैं और वो फिर डायरेक्ट उस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं, लोगों को नाम लेते हैं। सो उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि अभी तक वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनको मिलके काम करना होगा। लेकिन एक चीज जो उनकी वॉच के अंडर हुई है, उनकी निगरानी में हुई है, वो ये है कि हमने देखा कि आइसिस जो है, दाइश जो है, दौलत इस्लामिया जो है, उसको वो कमजोर जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई जैसे वो कहकर आए थे इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन उसका जोर टूटा है किसी हद तक। ये एक चीज है जो कि उनकी वॉच के अंदर उनके उनके होते हुए हुई है। दूसरी बात ये कि हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया के बारे में वो ये कहते आए हैं कि लड़ाई की धमकी देते रहे हैं, लेकिन अब जबकि वो ऑलरेडी एशिया के टूर में है और अब साउथ कोरिया के बाद वो चाइना जा रहे हैं, पहुंच चुके होंगे, तो वो ये कह के आए हैं कि नॉर्थ कोरिया के लिए बेहतर है कि वो बातचीत शुरू करे। तो ये उनके पहले वाले जो एक एग्रेसिव रेट्रिक था, एक एग्रेसिव बयान था कि हम जंग करेंगे और लड़ाई करेंगे, उससे मुख्तलिफ अब वो बातचीत की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी एक इसको एक पॉजिटिव कहा जाएगा।
ये थी वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
दिल्ली से निकलने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है ये बताने के लिए दिलनवाज पाशा स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी अमरेश, बात आज की नहीं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सांस लेने तक में दिक्कत आ रही है। मैं खुद इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ और यही आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि दिल्ली सांस लेने के लिए जो है मुश्किलों में है, और दैनिक जागरण कह रहा है स्मॉग से घुटा NCR का दम। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने चेहरे पर मास्क लगाए लोगों की तस्वीरें छापी हैं और ये खबर आज सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। आज 8 नवंबर है, भारत के लोग इस तारीख को बहुत अच्छे से जानते हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 8 नवंबर एक काला दिन था। उन्होंने जो नोटबंदी हुई है उसे संगठित लूट कहा है, और उसी का जवाब जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा है कि ये एक नोटबंदी एक नैतिक फैसला था। तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने आज के पहले पन्ने पर छापा है। और बेल्जियम का शाही जोड़ा भारत के दौरे पर है। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में मुस्कुराती हुई बेल्जियम की महारानी की तस्वीर छापी है। इसके अलावा एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस में है जो ध्यान खींच रही है, राजस्थान का मामला है। एक प्रेमी प्रेमिका ने अंतर्धार्मिक विवाह किया था, हाईकोर्ट ने इस विवाह को अनुमति दे दी है, और अखबार लिखता है कि फैज और पायल शांति पूर्वक और खुशहाल जिंदगी की कामना करते हैं। पद्मावती एक फिल्म आ रही है, राजस्थान की जो महारानी थी या एक काल्पनिक चरित्र भी उनको कहा जाता है, उस पर बनी है। और अब एक भाजपा सांसद ने बयान दिया है, जिनकी औरतें रोज शोहर बदलती हैं वो जौहर क्या जाने। और उन्होंने कहा है कि पद्मावती फिल्म में अगर भारतीय संस्कृति का अपमान हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पद्मावती फिल्म जो आ रही है इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। और अभी हरिद्वार की ही एक खबर है, इसी अखबार में पहले पन्ने पर है, जो बता रही है कि पद्मावती फिल्म से जुड़े जो है बातें व्हाट्सएप पर शेयर करने से बवाल हो गया है, मारपीट लोगों में हुई है। तो ये आज की अखबार।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। सोमवार की शाम को शुरू किए गए इस अभियान के दौरान कल नारायणपुर जिले में पुलिस ने 6 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और दूसरी सामग्री बरामद की गई है। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
मंगलवार को बस्तर के अबूझमाड़ के इलाके में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की दो घटनाएं हुई, जिसमें 6 माओवादी मारे गए। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और कई तरह के विस्फोटक आदि बरामद किए हैं। माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा सोमवार को शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार में 6 माओवादियों के मारे जाने को पुलिस एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। राज्य में नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी भी मुठभेड़ की इन घटनाओं को महत्वपूर्ण मान रहे हैं।
बरसात के बाद ये फिर से एक ऑपरेशन प्रहार 2 के रूप में कल लॉन्च किया गया था, जिसको हमने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर के जिलों में एक साथ लॉन्च किया था। करीब 2000 के ऊपर उसमें सुरक्षा बल थे और सारे पुलिस अधीक्षक हमारे इसमें लगे हुए थे। ये अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सभी जगह चल रहा है।
माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार में सुरक्षा बलों की अलग अलग इकाइयों के जवान शामिल हैं। डीएम अवस्थी ने दावा किया कि बरसात के बाद फिर से शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार में पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी।
जो फोर्स 450 का नारायणपुर का गया था, उसने अबूझमाड़ इलाके में ये सफलता प्राप्त की है। जो तेलंगाना से लगता है, उसमें कई कैंप, 2 जगह कैंप मिले हैं और गोलियां भी चली हैं और वहां पे काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और वर्दी और अन्य सामान मिला है।
लेकिन माओवादी मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग का मानना है कि सरकार को माओवादियों के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर भी काम करना होगा।
खुफिया सूचनाओं पर आधारित ऐसे ऑपरेशंस पहले भी हुए हैं और आज सुरक्षा बल अपने नेटवर्क और संसाधनों के हिसाब से लगातार ऐसे ऑपरेशंस करने में सक्षम भी है, लेकिन माओवादियों के खिलाफ विकास से लेकर संवाद तक और सैन्य रणनीति से लेकर राजनीति तक सभी मोर्चों पर समन्वित लड़ाई ही तर्कपूर्ण मानी जाएगी।
फिलहाल तो माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के 2000 जवानों का ऑपरेशन प्रहार अभी जारी रहेगा और पुलिस अफसरों की माने तो उनकी रणनीति अभी तो यही है कि माओवादियों के कब्जे वाले इलाके में घुसकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब आज की विशेष रिपोर्ट। प्राचीन शहर वाराणसी अपने ऐतिहासिक इमारतों, घाटों और एक अलग मिजाज के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही ये नगर अपने हुनरमंद बुनकरों और उनकी बुनी साड़ियों के लिए भी मशहूर है। लेकिन मशीनों के आने से सदियों पुराने हैंडलूम अब कम नजर आते हैं। क्या हाल है बनारस में साड़ियों के कारोबार का, सुनिए सुहैल हलीम की इस रिपोर्ट में।
बनारस की पहचान बन जाने वाली सिल्क की मशहूर साड़ियां तेजी से टेक्नोलॉजी की जंग हार रही हैं। शहर की तंग गलियों में अब मुश्किल से ही वो सदियों पुराने हैंडलूम नजर आते हैं, जिन पर हुनरमंद बुनकर दिन रात मेहनत करके सिल्क और जरी के बारीक धागों को खूबसूरत साड़ियों की शक्ल देते रहे हैं। बनारस में बुनकरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले अब्दुल्ला अंसारी।
देखिए, 10% ही बचा है जो पहले जो था उसके मुकाबले में। आज जो हेरिटेज बनारसी साड़ी इंडस्ट्री है वो सिर्फ 10% है।
और ये ही अब्दुल्ला फैसल और उनके भाई अब्दुल्ला सऊद के सामने सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने एक छोटे से अंधेरे कमरे में अपने बाप दादा की विरासत संभाल रखी है। दोनों भाइयों ने बचपन में ही हथकरघा पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इस काम में उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अब्दुल्ला फैसल।
इसका मुस्तकबिल, इसका फ्यूचर हमें तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब आदमी को इनकम दिखती है तो आदमी सोचता है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को उसी में डालें, लेकिन अब कोई भी अपने बच्चों को इसमें नहीं डालना चाहता। अब अपने बच्चों को लोग शिक्षा देना चाहते हैं, ग्रेजुएट बनाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि उनको भी कोई जॉब मिले।
वो कहते हैं कि कच्चा माल महंगा होने की वजह से बनारसी साड़ियां इतनी महंगी होती जा रही हैं कि आसानी से खरीदार नहीं मिलते। हथकरघा पर एक साड़ी 10 से 15 दिन में तैयार होती है और पावर लूम पर सिर्फ 3 घंटों में। अब्दुल्ला सऊद कहते हैं कि उनके सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं।
हम पढ़ाई लिखाई तो अभी तक किया नहीं है, एक बार तो रोटी से मारे जा रहे हैं। जाहिल जपड़ आदमी है, जो मिल जा रहा है दाल रोटी का 4000 रुपये, 5000 रुपये महीना, वैसा ही चल जा रही है दाल रोटी।
बनारस और उसके आसपास के इलाकों में लाखों लोग इस लघु उद्योग में काम करते हैं, लेकिन तेजी से गिरती हुई मांग, महंगे कच्चे माल और चाइना से कंपटीशन की वजह से अब हालात बदल रहे हैं। अब्दुल्ला फैसल कहते हैं कि कई मर्तबा ख्याल आता है कि अपना बनाया हुआ माल खुद बेचें।
जी, हमारे जहन में आता है, हमारे दिल में आता है कि हम अपना माल बनाते हैं तो अपनी मार्केटिंग खुद करें, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि हम लोग पैसों से बहुत मजबूर हैं।
बनारस में जगह जगह ऐसी आबादियां हैं जहां कभी हथकरघा चला करते थे, लेकिन अब उनकी जगह पावर लूम लेते जा रहे हैं। इस बारी काम का औरतें भी अभिन्न अंग रही हैं, लेकिन अब दूसरे काम तलाश करने पर मजबूर है। वाजिदा बेगम करीब ही एक घर में अपनी सिलाई मशीन पर सर झुकाकर काम कर रही हैं।
तो हम बनारसी साड़ी पहले बुनते रहे, हमें तो देखने लोग आता रहा कि ये औरत भी नहीं है साड़ी। वो छोड़े बहुत काम की है, सब काम करते करते अब तबीयत थक गई है, अब बहुत अखरता है ये करते, मगर पेट है तो करना ही पड़ता है।
इस पुराने हुनर को जिंदा रखने के लिए कुछ कोशिश सरकार की तरफ से भी हुई और कुछ मशहूर डिजाइनर भी मैदान में उतरे, लेकिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि उनकी जिंदगियों में कोई बेहतरी नहीं आई है। ये खरगोश और कछुए की दौड़ है और फिलहाल इसमें हर बार खरगोश ही जीत रहा है। सुहेल हलीम, BBC, बनारस।
और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। नागपुर में खेला जा रहा है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें मंगलवार यानी कल ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और सानिया नेहवाल फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। सेमीफाइनल में जहां PV सिंधु ने ऋत्विका को 17-21, 21-15 और 21-11 से हराया, तो वहीं सानिया नेहवाल ने अनुरा प्रभु देसाई को 21-11, 21-10 से हरा दिया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत भी फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। किदाम्बी श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में मात दी और सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सानिया नेहवाल और PV सिंधु आमने सामने होंगी। तो वहीं पुरुषों में HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत खिताब की लड़ाई में आमने सामने होंगे। अगली खबर बॉक्सिंग की रिंग से। वियतनाम के हो ची मिन शहर में खेले जा रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 बार की विश्व चैंपियन रही भारतीय खिलाड़ी मैरी कॉम ने कल यानी मंगलवार को 48 वर्ग स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैरी कॉम ने जापान की सुबासा कोमुरा को 5-0 से हराकर 6 में से 5वीं बार इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची। फाइनल में उनका सामना उत्तर कोरिया की किम हयांग मी से होगा। वहीं दूसरी तरफ 57 वर्ग स्पर्धा में भारत की सोनिया लाथेर उज्बेकिस्तान की योदगोरोय मिर्जा एवा को हराकर फाइनल में पहुंची। अगली खबर फुटबॉल ग्राउंड से। यूरोप में चल रहे प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम टीम ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। टीम के मैनेजर स्लेवन विलिज को हटाकर नए मैनेजर के तौर पर डेविड मॉयस को रखा गया है। डेविड मॉयस मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन टीम के मालिक रह चुके हैं। स्लेवन विलिज को वेस्ट हैम टीम के खराब प्रदर्शन के चलते हटाया गया।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में मतदान समाप्त हो गया है। बीते साल आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से इसे अमेरिका में होने वाला सबसे अहम चुनाव माना जा रहा है। कैटलोनिया के निर्वासित नेता कार्लस पुज़देमोन ने यूरोपीय संघ के नेताओं को अगले महीने कैटलोनिया में होने वाले चुनावों के नतीजे स्वीकार करने की चुनौती दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर में दक्षिण कोरिया की संसद को संबोधित करेंगे। ट्रंप का भाषण उत्तर कोरिया पर अमेरिका की नीति पर ही केंद्रित रहेगा। बोलीविया में हजारों लोगों ने राजधानी लापॉज की सड़कों पर मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इवो मोरालेज को साल 2019 में चौथी बार चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए देश के संविधान में बदलाव की मांग कर रहे हैं। BBC समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिनभर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया नवीन नेगी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की हर पल बदलती खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbcsindhi.com पर। नमस्कार।